वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 5 बोलिए प्रति उज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व एव आगतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वंग अभिवादन प्रत्युञ्जन्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वंगाभिवादन प्रत्युञ्जन्मो प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वंगाभिवादन प्रत्युञ्जन्मो प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिसंगाभिवादन शब्दार्थ प्रति की ओर उज्जग्मुः गए प्रहर्षेण परम प्रसन्नता पूर्वक प्राणं जीवन प्राण तन्वः शरीर का एव सदृश आगतम वापस आए अभिसंगम्य निकट जाकर विधिवत अच्छी तरह से परिस्वंग आलिंगन अभिवादन अभिवादन द्वारा प्रणाम द्वारा अनुवाद रिपीट से बोलिए वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और आलिंगन सहित एक दूसरे का स्वागत किया। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं और जीव हर्षित हो उठता है। कौरव परिवार के लिए विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल से उनकी अनुपस्थिति से निष्क्रियता व्याप्त थी। सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे अतः उनके वापस आने पर सर्वत्र हर्ष छाया था। तो आप लोग तात्पर्य से समझ गए होंगे कि इस श्लोक में किसकी बात करी गई है। जो नियमित रूप से कक्षा में बैठते हैं वो तो जानते हैं कि किसका जो है स्वागत हो रहा है, कौन आए हैं, कहाँ पर आए हैं। लेकिन जो नहीं नियमित रूप से बैठते हैं तो तात्पर्य से भी कुछ अंदाजा लग गया आप लोगों को। तो पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि विदुर जी 36 साल के बाद अब इसी महल में आए हैं जिस महल को उन्होंने छोड़ा था 36 साल के बाद। 36 साल पहले एक घटना घटी थी जिस समय महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था और उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर के आए थे संधि प्रस्ताव लेकर के और बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि अगर युद्ध रोकना चाहें तो बहुत अच्छी तरकीब है युद्ध को रोकने की। लेकिन दुर्योधन के बस में धृतराष्ट्र थे, किसी धृतराष्ट्र दुर्योधन के विरुद्ध कोई भी आदेश नहीं दे सकते थे या निर्णय नहीं कर सकते थे। तो फिर भगवान कृष्ण का अपमान हुआ और दुर्योधन ने जो है कृष्ण की अवज्ञा की, कृष्ण को कैद करने का भी प्रयास किया और इस प्रकार से कृष्ण चले गए। और फिर धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया मंत्रणा देने के लिए, सलाह देने के लिए। विदुर जी आए, बहुत अच्छी प्रकार से समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन विदुर जी को ये कहना पड़ा कि अगर आप पूरे कुल की रक्षा करना चाहते हो तो क्या करो, अपने कुल में एक व्यक्ति का त्याग करो, दुर्योधन का त्याग करो। ये तो कहना जरूरी था, और कोई दूसरा उपाय था ही नहीं शांति और सुरक्षा के लिए। दुर्योधन को कैद करो तो दुर्योधन फिर कैसे सहन करता, तो महादुष्ट था। तो फिर उसने विदुर जी को बहुत कड़े शब्द कहे कि हमारे घर का कुत्ता है, हमारे घर के टुकड़े खाता है और शत्रुओं के पक्ष में बोलता है, इसको नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। और धृतराष्ट्र की कमजोरी क्या थी कि दुर्योधन के विरुद्ध कुछ बोलते ही नहीं थे। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने जब अपमान किया विदुर जी का, तो विदुर जी ने ये धृतराष्ट्र की ओर से मान लिया क्योंकि धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं सकते थे। तो द्वार में ही धनुष को छोड़ करके और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए विदुर जी। और तीर्थ यात्रा के बाद जब आए तो उस समय क्या हो चुका है, कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया है, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया है हस्तिनापुर का। और उसके बाद 36 साल तक जो है पांडवों ने राज्य किया और भगवान कृष्ण के द्वारा जो है पूरे यदुवंशियों का भी जो है ना क्या हो गया है, परम धाम गमन हो गया है। आपस में संघार हुआ और सब यदुवंशी परम धाम में चले गए, भगवान कृष्ण भी परम धाम में चले गए। तो ये सूचना विदुर जी को प्राप्त हुई उद्धव जी से, और फिर उद्धव जी ने विदुर जी को सूचना दी कि मैत्रेय मुनि को भी भगवान ने वही उपदेश दिया जो मुझे दिया, और मैत्रेय जी को विशेष रूप से भगवान का आदेश है कि आप विदुर जी को ये उपदेश बता देना। तो फिर विदुर जी मैत्रेय जी से मिले हरिद्वार में और बहुत विस्तृत उन्होंने उपदेश प्राप्त किया मैत्रेय जी से। और इसके बाद फिर यहाँ आए कहाँ, हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में उनका स्वागत हो रहा है विदुर जी का। तो कौन कौन लोग हैं इसमें लिखा है, इस श्लोक में लिखा है कि प्रति उज्जग्मु मतलब बड़ी तेजी से उठे, प्राणम तमेव आगतम, जैसे कि शरीर में प्राण आ गए हों। जब तक शरीर में प्राण नहीं होते हैं, चेतना नहीं होती है, तो शरीर निर्जीव पड़ा रहता है, और जैसे ही चेतना आती है तुरंत कोई व्यक्ति उसके खड़ा हो जाता है, फिर निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर किन की बात की जा रही है कि विदुर जी के आने से एकदम जैसे शरीर में प्राण आ गए हों, अभी तक मरे पड़े थे, किसकी बात की गई है, पांडव। हाँ, पिछले श्लोकों में बताया गया, श्लोक संख्या 3 और 4 में ये बताया गया है कि धर्मपुत्रो, सबसे पहले तो धर्मपुत्र यानी युधिष्ठिर महाराज हैं, है ना, और सह अनुजा उनके 4 भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो 5 पांडव हो गए। और फिर धृतराष्ट्र, और फिर युयुत्सु वो स्वागत कर रहे हैं। युयुत्सु कौन है, जोर से बोलो, जोर से। धृतराष्ट्र के जो है वैश्य पत्नी से एक पुत्र हुआ युत्सु। युत्सु जो है ये कौरवों के पक्ष में था युद्ध करने के लिए, लेकिन जब भगवद्गीता का उपदेश समाप्त हो गया और युधिष्ठिर महाराज कौरव पक्ष की सेना में भीष्म से, द्रोण से, कृपाचार्य से, शल्य से अनुमति लेते हैं युद्ध की और आशीर्वाद भी लेते हैं विजय का, और वो सब भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य, शल्य ये सब आशीर्वाद देते हैं विजय का, यद्यपि शत्रु पक्ष की सेना में थे लेकिन गुरुजन थे। तो युधिष्ठिर महाराज फिर जो है अपने पक्ष की सेना में आकर के और जोर से घोषित करते हैं कि जो भी शत्रु के पक्ष का जो योद्धा है हमारे पक्ष में आना चाहे आ सकता है, अभी मौका है, बाद में मौका नहीं होगा, अभी मौका है, अंतिम अवसर कि जो शत्रु के पक्ष के योद्धा हमारे पक्ष में आना चाहते हैं वो आ जाए। तो युधिष्ठिर जो है ना उस समय शत्रु पक्ष की सेना को छोड़ करके और पांडव पक्ष में आ गया डंका बजाता हुआ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हें अकेले बचोगे इन सब का जो है प्रेत कर्म करने के लिए, मतलब मरने के बाद जो 100 जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो मारे जाएंगे तो तुम ही इनका जो है करोगे, जो भी मरने के बाद दाह संस्कार है वो सब तुम करोगे। तो युधिष्ठिर जो है ना जिंदा रहा, क्यों? क्योंकि पांडवों के पक्ष में आ गया। तो युधिष्ठिर वो है युधिष्ठिर। फिर सूतहा, सूत यहां पर कहा गया संजय को, संजय जिंदा है, संजय नहीं मारे गए। और सारद्वतहा, सारद्वतहा का मतलब कृपाचार्य। इन सब के जो नाम गिनाए जा रहे हैं किस लिए, इस श्लोक से क्या संबंध है इन सब का? विदुर जी का स्वागत कर रहे हैं, विदुर जी के आने से प्रसन्नता है। और प्रथा, प्रथा मतलब कुंती देवी, गांधारी, गांधारी कौन है? धृतराष्ट्र की पत्नी। और द्रौपदी, पांचों पांडवों की पत्नी। और सुभद्रा, सुभद्रा कौन है? अर्जुन की पत्नी है, कृष्ण की बहन है सुभद्रा। और उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु मारे गए हैं, उत्तरा है। और कृपी, कृपी कृपाचार्य की, कृपाचार्य की बहन द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी। तो ये सब जो है ना, और भी अन्य जो पत्नियां हैं, कौरवों की पत्नियां हैं और अपने अपने बच्चों से स्त्रियां हैं, अत्यंत हर्षित होकर तेजी से बढ़े। तो इन सबका जो है अब वर्णन हो रहा है कि प्रहर से अड़े प्रत्युत जग में प्रहर से अड़े प्राणम तन्वागतम, किसी शरीर में प्राण आ गए हों ऐसे मतलब चले उनका स्वागत करने के लिए आए विदुर जी का। तो एक शिष्टाचार है कि वैष्णव का जो है कैसे सम्मान किया जाए, भक्त का कैसे सम्मान किया जाए। अगर भक्त आए और हम जो है उसका सम्मान नहीं करते हैं इसका मतलब क्या है कि वो मरे हुए हैं, मरे हुए हैं। भक्त का जो ना हमेशा सम्मान होना चाहिए और कम से कम चेहरे में प्रसन्नता होने की, हरे कृष्णा बोलनी चाहिए, है ना, दूर से भी जो है पास से भी कम से कम इशारा करना चाहिए हरे कृष्णा का। अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या है, चेतना नहीं है, चेतना नहीं है मतलब अचेत हैं, बेहोश हैं या मरे हुए हैं, उनमें जीवन नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, ये चीज सीखना बहुत जरूरी है कि हम जो है वैष्णवों से कैसे मिलेंगे। और फिर विदुर जी जो है, विदुर जी का इतना सम्मान हो रहा है जबकि सामाजिक दृष्टि से विदुर जी बहुत निम्न स्तर के हैं, उनको शूद्र माना जाता है, हालांकि ये हैं वैश्य नहीं, दासी पुत्र हैं, माफ करना, दासी पुत्र हैं, व्यास जी के द्वारा दासी से उत्पन्न किए हुए पुत्र हैं ये। तो वैसे सामाजिक दृष्टि से ये शूद्र हैं। इन गीता में जैसे भगवान कहते हैं ये पिन्यू, ये पिशु पापियों ने, मामे पार्थ विपाशत ये पिशु पापियों ने हा स्त्रियों वैश्या था शूद्रा से भी आंती परम गति जितने भी पापियों ने हैं तो वे परम गति के अधिकारी हैं। तो चूंकि परम गति के अधिकारी हैं तो भगवान के बहुत प्रिय हैं और भगवान के प्रिय हैं तो फिर इनका भगवान जैसा सम्मान भी होना चाहिए। तो फिर इसका विचार नहीं किया करना चाहिए कि कौन व्यक्ति नीच है, जन्म के आधार पर कौन व्यक्ति नीचा है कौन व्यक्ति ऊंचा है इसका विचार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से विदुर जी और यमराज हैं जो कि शूद्र के रूप में जन्मे 100 साल के लिए क्योंकि उनको शाप मिला है मांडव ऋषि के द्वारा। तो ये भी भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। कलयुग में विशेष रूप से लोग शूद्र होंगे और उनको भी भक्ति करने का अधिकार है और उनको भी सम्मान सम्मानित होने का अधिकार है। ये भगवान दिखाने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए विदुर जी को यमराज को शूद्र के रूप में जन्म देते हैं। भगवान जो है ना जो कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। मांडव ऋषि का श्राप मिला जो 100 साल के लिए शूद्र बने लेकिन इसके पीछे भगवान का एक और भी उद्देश्य है कि यमराज जैसे महान भक्त हैं इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी ब्रह्मा जी स्वयं जो है क्या बने हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में पैदा हुए हैं है ना। और फिर भगवान ने स्वयं उनका इतना सम्मान किया, हरिदास ठाकुर का कितना सम्मान किया और सम्मान कराया सब लोगों से। तो ये सब जो है भगवान उन सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए जो गीता में भगवान ने कहे हैं उन सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए भगवान ये स्वयं ये कार्य करते हैं। अपने भक्त को निज परिवार में जन्म दे करके और फिर उसकी भक्ति की महिमा को बढ़ा करके और समाज में सम्मान करवाते हैं। हरिदास ठाकुर को भी नामाचार्य की उपाधि दी है। तो इस तरह से ये हमने चर्चा की इस श्लोक पर। अब आज चूंकि चंदन यात्रा है तो भी कुछ विशेष इच्छा है भगवान की कि चंदन यात्रा की जो है हम चर्चा पहले करें इसके बाद चंदन यात्रा का दर्शन करें। शायद ऐसी भगवान की इच्छा थी, जैसे 8 बजे दर्शन होना था तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि पहले चंदन यात्रा की हम लोग चर्चा करें श्रवण करें कि घटना क्या है। तब विशेष रूप से जब चंदन यात्रा का दर्शन करेंगे तो हम आनंद प्राप्त करेंगे। तो ये जो चंदन यात्रा है ये माधवेंद्रपुरी के एक विशेष घटना हुई जिससे कि शुरू हुई चंदन यात्रा। ये भी गीता का एक सिद्धांत है। गीता में भगवान ने कहा सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। वो कैसा श्लोक है सयत प्रमाणम कुरुते, ये तो दूसरी पंक्ति है। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है उसी प्रकार के सामान्य लोग करते हैं अनुसरण करते हैं। तो माधवेन्द्रपुरी जो है महान भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं। तो आज के दिन उन्होंने चंदन यात्रा शुरू की थी एक विशेष मंदिर में। एक विशेष विग्रह के शरीर में चंदन लेप लगाया था तो उस कारण से ये चंदन यात्रा अब सब जगह होती है। विशेष रूप गौड़ी संप्रदाय के जो भक्त हैं, माधवेन्द्रपुरी की शिष्य परंपरा के जो भक्त हैं और इस्कॉन के जितने मंदिर हैं तो 21 दिन के लिए ये चंदन यात्रा होती है। इसका भी कारण है क्योंकि 21 दिन में वो चंदन समाप्त हुआ। माधवेन्द्रपुरी जो चंदन लाए थे जगन्नाथपुरी से तो वो घिसते जितने समय तक जो है ना वो समाप्त होगा तब तक चंदन लगाया जाएगा। तो 21 दिनों में समाप्त हुआ वो चंदन। इस कारण से ये चंदन यात्रा 21 दिन की मनाई जाती है। तो इसकी घटना यह है कि माधवेन्द्रपुरी दक्षिण भारत से आए थे और ये परमहंस सन्यासी थे और अयाचक वृत्ति में रहते थे। अयाचक वृत्ति का मतलब है कि बिना मांगे कुछ मिल जाए तो वो खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे। तो गोवर्धन में आए, वृंदावन में गोवर्धन में आए, दर्शन किया। उस समय गोवर्धन और जो वृंदावन का क्षेत्र है वो बिल्कुल जंगली था। ये सब ऐसी आबादी नहीं थी ना मंदिर थे। सबसे पहला मंदिर भी जो बना है वृंदावन में वो माधवेन्द्रपुरी नहीं बनाया है, और सबसे पहले एक विग्रह जो प्राप्त हुआ वो माधवेन्द्रपुरी को ही प्राप्त हुआ गोपाल जी का। इसके पहले वृंदावन घोर जंगल था, और इसका कारण यह है कि मुसलमानों ने आक्रमण किए तो जो पुजारी लोग थे, मंदिरों के पुजारी लोग थे, वो मूर्तियों को कहीं कुंड में उन्होंने डाल दिया, छिपा दिया, और कहीं जमीन नीचे दबा दिया। तो फिर ये जो अलग अलग जो विग्रह हैं वृंदावन जो मंदिर बने हैं तो वे स्वयं प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले गोपाल जी प्रकट हुए माधवेन्द्रपुरी के सामने। तो ये तो कथा बड़ी लंबी है, हम इसको संक्षेप में करके जो चंदन यात्रा से संबंधित घटना है उसी को बता रहे हैं। तो माधवेन्द्रपुरी को सरना देते हैं गोपाल जी, और वो स्थान बताते हैं जहां पर वो नीचे दबे थे। तो वहां के स्थानीय निवासियों की सहायता से माधवेन्द्रपुरी ने खुदवाई कराई और गोवर्धन के ऊपर मंदिर की स्थापना की गोपाल जी की, और 2 साल तक माधवेन्द्रपुरी उनकी सेवा करते रहे गोपाल जी की। अब क्या हुआ, माधवेन्द्रपुरी ने एक दिन सपना देखा, चंदन यात्रा से संबंधित घटना है। इस सपने में माधवेन्द्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। गोपाल कहे पूरी आमार ताप नहीं जाए, मलय जे चंदन लेप तबे से जुड़ाए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि गोपाल विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे, और अब यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उन पर ऊपर से हजारों घड़े पानी डाला गया था किंतु फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने माधवेन्द्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। अब गोपाल जी क्या कह रहे हैं सपने में, तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, जल्दी करो, क्योंकि यह काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही करो। मलय अज आने आया नीला चल हईते, अन्य हईते नए तुम ही चल त्वरित। इस स्वप्न को देखकर माधवेन्द्रपुरी गोसाई भगवत प्रेम के कारण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए वे बंगाल की ओर चल पड़े। सपना देखे पूरे गोसाई हैला प्रेम भेष, प्रभु आज्ञा पाले बारे गेला पूर्व देश। चलने के पूर्व माधवेन्द्रपुरी ने नियमित सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था करा दी और विभिन्न लोगों को विविध कार्यों में लगा दिया। फिर गोपाल के आदेश को सिरोधार कर वे बंगाल की ओर रवाना हुए। सेवार निर्बंध लोक करिल स्थापन, आज्ञा मांगे गौड़ देश करिल गमन। अब रास्ते में रेमुणा मंदिर मिला, तो वहां की भी घटना को मैं छोड़ रहा हूं, वो भी बड़ी सुंदर घटना है कि रेमुणा मंदिर में गोपीनाथ जी का विग्रह था और माधवेन्द्रपुरी के कारण गोपीनाथ जी ने खीर का एक पात्र चुराया, तब से वो प्रसिद्ध हो गए खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से। फिर वहां से रेमुणा से माधवेन्द्रपुरी आते हैं कहां पर, जगन्नाथपुरी। जब माधवेन्द्रपुरी जगन्नाथपुरी आए तो लोग उनकी दिव्य ख्याति से परिचित थे, अतएव लोगों की भीड़ आने लगी और भक्तिवश उनका तरह तरह से लोग सम्मान करने लगे। माधवपुरी श्रीपाद आए लोग के हैला ख्याति, सब लोग के आखे तारे करे बहु भक्ति। माधवेन्द्रपुरी जी ने जगन्नाथ जी के सारे नौकरों और समस्त भक्तों से श्री गोपाल के प्राकृत्य की कहानी बताई कि वो क्यों आए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ सेवक जत जते के महंत, सभा के कहले पूरी गोपाल वृत्तांत। जब जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों ने सुना कि गोपाल विग्रह चंदन चाहते हैं तो सभी हर्षित होकर चंदन एकत्र करने का प्रयास करने लगे। गोपाल चंदन मांगे सुनी भक्तगण, आनंदे चंदन लागे करीला जतन। ये बहुत ही शुभ घटना कि श्री विग्रह स्वयं चंदन मांग रहे हैं। भगवान अपने भक्त के कितने अधीन रहते हैं, कितने आश्रित रहते हैं। जैसे भगवान स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको गर्मी लग रही है वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको चंदन चाहिए। माधवीपुरी को कहते हैं कि तुम ही ला सकते हो और कोई नहीं, मेरा कष्ट तुम ही दूर कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो भक्तों की कितनी खुशी होती है जब भगवान इस तरह से भक्तों के आश्रित होते हैं। तो जो लोग सरकारी अफसरों से परिचित थे वे उनसे मिलकर कपूर और चंदन मांग मांग कर एकत्र करने लगे। राज पात्र सामने जा रहे जा रहे परिचय सारे मांगे कर पूरे चंदन करीला संचय। अब इस चंदन को ले जाने के लिए माधवेन्द्रपुरी को एक ब्राह्मण दिया गया और एक नौकर दिया गया। उन्हें आवश्यक रास्ते का खर्चा भी दिया गया। तो आपको पता है कितना चंदन था वो? हैं? 40 किलो एक मन, एक मन 40 किलो से कुछ कम है। वो पुराना जो मन था ना 40 शेर का था, तो करीब 37 किलो समझो, है ना। इतना चंदन और देखो 21 दिनों में घिस करके समाप्त किया गया। सोचो कितनी घिसाई की होगी और कितने लोगों ने मेहनत की होगी। 37 किलो चंदन 21 दिनों में समाप्त किया। इस चंदन को एक विप्र एक सेवक चंदन बहिते पूरी गोसाई संगे दिल संभल सहिते। रास्ते के चुंगी वसूलने वालों से बचने के लिए माधवेन्द्रपुरी को सरकारी अफसरों से प्राप्त करके आवश्यक कागजात दिए गए। ये कागजात उनके हाथ में दिए गए, माधवेन्द्रपुरी के हाथ में दिए गए। घाटी रानी छाणाए थे राज पात्र द्वारे राज लेखाकारी दिल पूरी गोसाई करे। इस तरह माधवेन्द्रपुरी चंदन के गट्ठर समेत वृंदावन के लिए रवाना हो गए और कुछ दिनों के बाद ये पुनः रेमुणा गांव तथा वहां के गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे। ये रास्ते में पड़ रहा है इसलिए, लेकिन उनको जाना कहाँ था? वृंदावन जाना था। चली ले माधव पूरे चंदन लिया कत देने रेमुणा से उतारी लगिया। अब देखिए ये सब पैदल यात्रा करनी पड़ती थी उस समय, 500 साल से भी पहले की बात है। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु थे और उनसे भी पहले चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो बहुत लंबी यात्रा है, कई दिनों की यात्रा है पैदल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस मंदिर में जब माधवीपुर ने विश्राम किया, सवेरे उनको निकलना था, लेकिन इस मंदिर में जब माधवीपुर ने रात में विश्राम किया तो फिर उनको सपना दिखाई दिया। रात्रि के अंत में उन्हें सपना दिखाई दिया, रात्रि के अंत में सपना दिखाई दिया, मतलब सच्चा है सपना। रात्रि का अंत होता है किस समय? नहीं, ब्रह्म मुहूर्त बाद में आता है, 3:22 3:22 पर निशांत काल शुरू होता है, ठीक है ना। तो 3:22 के बाद उनको सपना आया और क्या सपना आया? सही रात्रि दिल वाला एक शेष रात्रि है ले पूरी देखे ले स्वपन। अब माधवीपुर ने सपना देखा कि गोपाल उनके सामने आकर कह रहे हैं। ये तीसरी बार सपना आया माधवीपुर को गोपाल जी का। सबसे पहले तो गोपाल जी एक बालक के रूप में दूध देख रहे थे और फिर सपना आया कि मैं नीचे दबा हूं मुझे निकालो। फिर दूसरी बार सपना आया, गोपाल जी कह रहे हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं बहुत सालों से जमीन के अंदर दबा था। और तीसरी बार सपना आया और क्या कह रहे हैं गोपाल जी? अरे माधवेन्द्रपुरी, मुझे पहले से ही सारा चंदन और कपूर प्राप्त हो चुका है। क्योंकि माधवेन्द्रपुरी को अभी बहुत तकलीफ होगी, एक तो चंदन का भार है और दूसरे रास्ते में मुसलमानों के राज्य में मिलेंगे। मुसलमानों के जो राज्य हैं वो तो कोई भी सरकारी कागजात को स्वीकार नहीं करते, वो तो कई प्रकार से तंग करेंगे। तो इसलिए भगवान गोपाल जो है भक्त को बहुत कष्ट में नहीं देखना चाहते रहे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मुझे प्राप्त हो गया, मतलब आप भी चंदन लेकर के मेरे पास मत आओ। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त हो चुका है, गोपाल आशिया गाय सुना है माधव कर्पूर चंदन राम पाई लाम सबम। तुम सारे चंदन को कपूर के साथ पीस कर तब तक गोपीनाथ के शरीर पर इसका नित्य लेप करते रहो जब तक ये पूरा समाप्त न हो जाए। कर्पूर सहित घटे सब चंदन गोपीनाथ अंग नित्य का रहा लेपन। मेरे शरीर और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न है। अतः यदि तुम गोपीनाथ के शरीर में चंदन लेप करोगे तो वह मेरे शरीर में लेप हो जाएगा, इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। अब ये जो है भगवान की आज्ञा से माधवीपुरी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये नियम हमेशा लागू होगा। अगर आप इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं और आप सोचो कि हम बंबई के मंदिर में कर लेंगे, एक ही चीज है, तो ये जो है ना मनमानाचरण है। जो भक्त राधा पार्षद से जुड़े हुए हैं तो वो सोचे हम दूसरे मंदिर में सेवा कर लेंगे, बराबर है नहीं, है ना। माधवीपुरी ने अपनी इच्छा से ये नहीं किया, बल्कि गोपाल जी ने जो है जब आदेश दिया कि ठीक है ये कार्य जो है तुम करो, इसमें मेरी सेवा हो जाएगी, तो ये चीज होना समझने वाली बात है। तात्पर्य गोपाल लिखते हैं, गोपाल वृंदावन में से थे जो रिमणा से बहुत दूर है, उन दोनों मुसलमानों द्वारा शासित प्रांतों से होकर जाना होता था, जो कभी कभी यात्रियों के आने जाने पर व्यवधान डालते थे। अपने भक्त की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए भक्तों के सुबहसी गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर में कर दें। जो गोपाल के शरीर से अभिन्न है, इस तरह भगवान ने माधवेंद्रपुरी को कष्ट और असुविधा से बचा लिया। जो भक्त है वो कष्ट की चिंता नहीं करते हैं, भगवान के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भगवान जो है देखते हैं कि कितना कष्ट, माधवीपुरी को कितनी परेशानी होगी, तो भगवान ऐसे कहते हैं, गोपीनाथ आमारे से एक अंग है यहाँ के चंदन जिले हे मोर ताप छयन। और गोपाल जी क्या कहते हैं, तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कार्य करने में तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिचक तो होगी, क्योंकि उनका जो है ना प्रेम जुड़ा है गोपाल से, गोपाल जी को जमीन के अंदर से निकाला है, तो माधवीपुरी को तो संकोच होगा ही। लेकिन फिर गोपाल जी फिर कह रहे हैं क्या, कि मेरे आदेश से तुम हिचको नहीं इस कार्य में, कि मुझे गर्मी लग रही है और तुम वहां चंदन लगा रहे हो तो तुम हिचको नहीं, मुझ पर विश्वास रखकर जो आवश्यकता है वो पूरी करो। दिधना भाभी है न काड़े है किचु मने विश्वास कार्य चंदन दे आमारे बचने। इतना आदेश देकर गोपाल अंतर्धान हो गए और माधवेंद्रपुरी जग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के नौकरों को बुलाया तो वे वहां उपस्थित हो गए। ये ते बाली गोपाल गे ले गोसाई जगीलाम गोपीनाथ से वगण डाकिया आनीलाम। माधवेंद्रपुरी ने कहा, गोपीनाथ के शरीर पर यह कपूर तथा चंदन मलो जिसे मैं वृंदावन के गोपाल के लिए लाया हूँ, इसे नियमित रूप से नित्य मलो। प्रभु रे आज्ञा है ना ए कर्पूर चंदन गोपीनाथ रंग नित्य कर लेपन। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन मला जाए तो गोपाल शीतल होंगे, आखिर भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, उनका आदेश प्रबल है। देखा, माधवीपुरी ने भगवान के आदेश को इस प्रकार स्वीकार किया कि वह पूर्ण स्वतंत्र हैं, उनका आदेश बहुत प्रबल है, ये मान करते हैं। लेकिन ये सिद्धांत नहीं बनाना कभी भी, ठीक है एक ही चीज है, एक ही है, इधर के भगवान उधर के भगवान एक हैं, नहीं। जो भक्त हैं वो इस मंदिर के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो कोई कहता है हम तो वृंदावन से लाइफ मेंबर बनेंगे, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो ये कहेंगे कि आप यहाँ से मेंबर बनो और इस मंदिर से जुड़ो, है कि नहीं, हम तो ये कहेंगे। तो ये भक्तों का कर्तव्य है, राधा पार्षद मंदिर को के भक्तों का यही कर्तव्य है कि वो इस मंदिर में मतलब जुड़े। कोई व्यक्ति कहता है हम तो वृंदावन से जुड़ेंगे, है कि नहीं, तो ये चीज है। अगर आप जो है इस मंदिर के भक्तों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस मंदिर की सेवा करो, ऐसा नहीं है कि ठीक है सब एक ही है, सब एक ही है कहीं। तो आगे, हाँ, यदि गोपीनाथ के शरीर पर, हाँ ये तो हो गया। आगे, गोपीनाथ के नौकर ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि गर्मियों में ये सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने के लिए इस्तेमाल होगा। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परि बेचंदम सुनि आनंदित हैला सेवा के रमन। माधवेंद्रपुरी ने कहा ये दो नौकर नियमित रूप से चंदन भेजेंगे। माधवेंद्रपुरी के साथ दो आदमी थे, एक ब्राह्मण था और एक नौकर था। तो ये दो आदमी चंदन भेजेंगे और तुम अपनी सहायता के लिए अन्य दो व्यक्ति ले लो, उनका वेतन मैं दे दूंगा। माधवेंद्र कहते हैं कि उनका खर्चा जो भी उनको वेतन है वो मैं दूंगा, अपने दो आदमी और लगाओ। चार आदमी निरंतर चंदन भेजेंगे। पूरी कहे ऐ दुई गति बे चंदन आर जन दुई दे दी भये वेतन। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ जी को घिसा चंदन दिया जाता, इससे गोपीनाथ के नौकर अत्यंत प्रसन्न थे। हे मत चंदन दे प्रत्या गतिया पराए सेवक सब आनंद करिया। इस तरह जब तक चंदन पूरा चुक नहीं गया तब तक गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप होता रहा और माधवेंद्रपुरी तब तक वहीं रहे आए। अब सोचिए चंदन घिसने में कितनी दिक्कत होती है, छोटा सा भी टुकड़ा है चंदन का उसको समाप्त करने में कितनी दिक्कत होती है। जो भक्त घिसते हैं उनको पता होगा, कौन कौन भक्त चंदन घिसते हैं हाथ बताइए तो उनको पता होगा क्यों कितनी दिक्कत होती है चंदन चंदन की लकड़ी समाप्त करने में। कितना चंदन घिसने से कितनी दिक्कत होती है पूरा चंदन समाप्त करने में। और कितना चंदन समाप्त किया था, 37 किलो चंदन 21 दिन में समाप्त किया है। चार आदमी कितनी मेहनत की होगी। उस समय आदमियों का शरीर भी ऐसा था ना, आदमियों के शरीर उनकी शक्ति क्षमता कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। तब तक माधवेंद्रपुरी वहीं रहे क्या सुपरवाइज करने के लिए। ये उनकी चिंता थी कि पूरा का पूरा चंदन घिसा जाए, कोई लेके ना जाए कोई लेके ना जाए, पूरा का पूरा चंदन घिसा जाए और वो गोपीनाथ जी के शरीर में लगाया भी जाए, ये उनकी चिंता थी। तब तक वो रहे वहीं पर जब तक पूरा पूरा चंदन घिसा नहीं गया और गोपीनाथ जी के शरीर में लगाया नहीं गया। प्रत्यय चंदन पराय यावत हैला अंत तथा रहिले पूरी तावत पर्यंत। गर्मी के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए जहां उन्होंने बड़े आनंद से चतुर्मास से बिताया। तो 21 दिन की चंदन यात्रा तभी से प्रचलित हुई है क्योंकि 21 दिन में वो चंदन पूरा समाप्त हुआ था। तो ये जो घटना है ये चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं रेमुणा में, उनके साथ में जो भक्त हैं उनको सुना रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि इस जगत में क्या माधवेंद्रपुरी के समान कोई भाग्यशाली है, माधवेंद्रपुरी के समान क्या कोई भाग्यशाली है। नित्यानंद तुम विचार करो, प्रभु कहे नित्यानंद कर रहा विचार पूरी समय भाग्यवान जगते नहीं आर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली हैं कि दूध देने के बहाने उनके समक्ष साक्षात कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में 3 बार आदेश दिया। दुग्ध दान छाले कृष्ण जा रहे देखा दिल 3 बारे स्वप्न आते जा रहे आज्ञा कैलन। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से अनुग्रहित होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करके उन्होंने सारे जगत का उद्धार किया। जार प्रेमे बस है या प्रकट हैला सेवा अंगीकार कार्य जगत तारीला। ये माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी को जमीन के नीचे से निकाला था, अभी वही गोपाल जी आप लोग जानते कहां पर हैं, नाथ द्वारा मैत्रीनाथ जी के नाम से विख्यात हैं। नाथ द्वारा तो पूरे संसार का उद्धार कर रहे हैं है ना, लेकिन श्रेय तो माधवेंद्रपुरी को प्राप्त हो रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि मैं नहीं निकल सकता हूं जमीन के अंदर से, मैं नहीं निकल सकता हूं, तुम मुझे निकालो, तुम मेरा उद्धार करो, मैं पूरे संसार का उद्धार करूंगा। देखा तो जो भक्त है वो भगवान का उद्धार करता है, भगवान पूरे संसार का उद्धार करते हैं। भगवान कितने आश्रित हैं भक्त के कि वो कहते हैं मैं पूरे संसार का उद्धार करूंगा लेकिन तुम तो मेरा उद्धार करो क्योंकि मैं नीचे दबाऊ मैं निकल नहीं सकता तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उन्होंने पूरे जगत का उद्धार किया गोपाल जी ने, माधवेंद्रपुरी ने उनका उद्धार किया। और माधवीपुरी के कारण गोपीनाथ जी ने खीर पात्र चुराया, इस तरह खीर चुरा के नाम से प्रसिद्ध हुए या बदनाम हुए जो भी हो, माधवीपुरी के कारण खीर चोरा, मतलब हमेशा के लिए चोर कहलाने लगे वो माधवीपुरी के कारण। जार लागे गोपीनाथ छीन कैला चोरी, अतएव नाम हैला खीर चोरा करी। माधवीपुरी ने गोपीनाथ के सारे शरीर पर चंदन का लेप दिया, इस प्रकार के भगवत प्रेम से बेहबल हो गए। कर्पूर चंदन जार अंग चढ़ाइल, आनंदपुरी गोसाई प्रेम उठालिल। मुसलमानों द्वारा शासित भारत के प्रांतों में चंदन और कपूर लेकर यात्रा करना बहुत असुविधा पूर्ण था, इसी कारण से माधवीपुरी कष्ट में पड़े होंगे, गोपाल के ग्रह को ये ज्ञात हो गया। भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, तो उनको पता हो गया कि माधवीपुरी आएंगे इतनी दूर से, तो बहुत दिक्कत होगी। मृक्ष जैसे कर्पूर चंदन आने थे जंजाल, पूरे दुख पावे जानिया गोपाल। भगवान बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों पर अनुरक्त होते हैं, अतः जब गोपीनाथ चंदन से ढक गए तो माधवीपुरी का श्रम सार्थक हो गया। महादयामय प्रभु भक्त वत्सल, चंदन परिस भक्त श्रम करीला सफल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवीपुरी के उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए नित्यानंद के समक्ष विचार रखा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके सारे प्रेम कार्यकलाप असाधारण है, निसंदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। पूरी रा प्रेम पर कासा करा विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया कि माधवीपुरी अकेले रहा करते थे, वे पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे, वे किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे और संसारी बातें ना करने के भय से बिना किसी संगी के रहते थे, बिल्कुल अकेले। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। गोपाल जी का आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग मांग कर चंदन एकत्र करने के लिए हजारों मील की यात्रा की। सोचिए, हजारों मील पैदल चला भगवान की आदेश पाकर। हे ने जन्म गोपाले रे आज्ञा मृत पैया, सहस्र कोष आसी बोले चंदन मांगिया। माधवीपुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से भोजन नहीं मांगा, इस पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का बोझा अपने सिर पर रखा। भूखे रहे तब अन्न मांगिया न खाए, हे न जन चंदन भार बाही लिया जाए। अपने निजी सुख सुविधा की परवाह ना करके माधवीपुरी एक मन चंदन लगभग 82 पौंड और 20-16 लगभग 4 औंस कपूर गोपाल के शरीर पर लेपने के लिए ले आई। उनके लिए यही दिव्य आनंद काफी था। ये आनंद था कि गोपाल के शरीर में लगाना है, इस आनंद से इतने कष्ट को उठा रहे थे, कष्ट का अनुभव नहीं कर रहे थे। माने के चंदन तोला बिस के कर्पूर, गोपाले पाराई यही आनंद प्रचुर। क्योंकि उड़ीसा प्रांत से बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतएव चुंगी अधिकारी पूरा स्टॉक जब्त कर लेता, किंतु माधवीपुरी ने उसे सरकार द्वारा दिया गया पत्र दिखलाया जिससे वे कठिनाइयों से बदले। उत्कले रदानी राखे चंदन देखिया, ता एलाएल राज पत्र देखाइया। माधवीपुरी मुसलमान शासित प्रांतों से होकर वृंदावन की लंबी यात्रा करते समय असंख्य संतरियों के होते हैं भी तनिक भी चिंतित नहीं थे। मलेच्छ जैसे दूर पथ जगाती अपार, श्रीमते चंदन ने बनाई ये विचार। यद्यपि माधवीपुरी के पास एक छदाम नहीं था, किंतु वे चुंगी अफसरों से तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र उत्साह क्या था, गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ ले चलने में था उत्साह, ये था। जबकि एक भी पैसा नहीं था, कैसे जाएंगे और कैसे अधिकारियों से निपटेंगे। संग एक बट नाए घाटे दान देते, तथा भी होता है बड़े चंदन लैया देते। उत्कट भगवत प्रेम का ये स्वाभाविक परिणाम है, भक्त अपनी असुविधाओं और विघ्नों पर विचार नहीं करता तो सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। प्रगाढ़ प्रेम रे स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न धीर न करे विचार। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, जिन लोगों में कृष्ण के लिए उत्कट प्रेम है, ये अपनी असुविधाओं और विघ्नों की परवाह नहीं करते, ऐसे भक्त भगवान या उनके प्रतिनिधि गुरु का आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। यहाँ तक कि घोर संकट आ जाने पर भी ये परम संकल्प के साथ अविचलित भाव से आगे बढ़ते हैं। इससे सेवक का उत्कट प्रेम सिद्ध होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, जो भव बंधन से छोड़ना चाहते हैं, उन्हें जिन्होंने उत्कट कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वे भगवत धाम वापस जाने के सुपात्र हैं। कृष्ण का उत्कट प्रेमी असुविधा, अभाव, बाधा या दुख की परवाह नहीं करता। कहा जाता है कि जब किसी को वैष्णव में दुख या शोक दिखाई दे तो वह उसके लिए रंच भर भी दुख या शोक नहीं होता, ये तो दिव्य आनंद होता है। शिक्षा शास्त्र में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, आश्रित सेवा पादरताम, कृष्ण का उत्कट प्रेमी कभी भी अपनी सेवा से विचलित नहीं होता, भले उसके समक्ष कितनी ही कठिनाइयां या व्यवधान क्यों ना आए। श्री गोपाल जी दिखलाना चाहते थे कि माधवी इंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, अतः उन्होंने नीलाचल से चंदन और कपूर लाने के लिए उनसे कहा, ए भाव गाल प्रेमा लोक देखाई थे, गोपाल तारे आज्ञा दे ले चंदन आनी थे। काफी कष्ट उठाकर अत्यधिक परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी चंदन के बोझ को रेमुणा ले आए, फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न थे, उन्होंने सारी कठिनाइयों की परवाह नहीं की। बहु परिश्रमे चंदन रेमुणा आनिल, आनंद बढ़िल मने दुख न जानिल। गोपाल भगवान ने माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलाचल से चंदन लाने का आदेश दिया, और जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में खड़े उतरे तो भगवान उन पर अत्यंत कृपालु हुए। परीक्षा कारी ते गोपाल कैला आज्ञा दान, परीक्षा कारी आतेला दयावान। भक्त और भक्त की प्रिय वस्तु श्री कृष्ण के मध्य प्रेमा भक्ति के ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है, सामान्य व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना कठिन है, सामान्य व्यक्तियों में इतनी क्षमता नहीं होती। हे भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, वो जीते हो आमा सांबर नहीं अधिकार। तो ये चैतन्य महाप्रभु ये घटना सुना रहे माधवेंद्रपुरी की, और ये बार बार चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं सुनाते हैं इसी कथा को, बार बार सुनते सुनाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ये कहना है कि ये जो दिव्य कथाएं हैं भगवान की या भक्तों की, ये उसी प्रकार आनंद देती हैं बार बार सुनने सुनाने में, जैसे चंदन को जितना घिसो उतना ही क्या होता है, सुगंध निकलती है, सुगंध निकलती है ना। जो संसारी कथाएं हैं उनको आप बार बार सुनते हैं सुनाते हैं तो उनकी घटना उनकी तुलना की गई किससे, चबाए को चबाना, हाँ जैसे गन्ना चूस लिया, आप चूसते तो क्या है उसमें, कुछ रस नहीं है ना। लेकिन ये जो कथाएं हैं, ये दिव्य कथाएं जो माधवेंद्रपुरी की कथा है, तो ऐसी कथाओं को बार बार सुनने से सुनाने से वैसा नहीं होता है कि फिर रस ना आए। इसकी तुलना उससे नहीं की गई है कि गन्ना को चूस लिया तो फिर उसमें बस अब चूसने से क्या है, बेकार है, परिश्रम है, कोई रस नहीं। चंदन जितना घिसो जितना रगड़ो उतना ही शीतलता सुगंध निकलती है। तो अभी समय होने वाला है भगवान के दर्शन का, तब तक हम लोग कुछ और प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न है कि विदुर जी दासी पुत्र थे तो क्या व्यासदेव के पुत्र थे, व्यासदेव के द्वारा दासी से उत्पन्न थे, व्यासदेव ब्राह्मण थे। हाँ, इनका प्रश्न है कि व्यासदेव ब्राह्मण थे तो फिर उनको शूद्र क्यों कहते हैं, विदुर जी को शूद्र क्यों कहते हैं? हाँ, व्यासदेव ब्राह्मण थे लेकिन अगर है दासी, माता दासी थी है ना, इसलिए विदुर जी को छत्ता कहा जाता है। छत्ता जो है एक विशेष मतलब उपाधि होती है, जो ब्राह्मण पिता और माता शूद्र हो तो छत्ता कहलाते हैं। तो उनका मतलब सामाजिक दृष्टि से वो स्थान नहीं था जो कि और दूसरे भाइयों का था, आप समझे ना। तो इस तरह से सामाजिक दृष्टि से जो है उनका इतना सम्मान नहीं था, लेकिन विदुर जी का बहुत सम्मान करते थे, धृतराष्ट्र भी बहुत सम्मान करते थे हैं, और हमेशा सम्मति लेते थे, और विदुर जी को कुछ गांव भी दिए थे उन्होंने जिससे कि उनका सब प्रकार का खर्चा चलता रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो विदुर जी का बहुत सम्मान होता था, यहाँ पर देखें विदुर जी का कितना सम्मान हो रहा है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री माधवेन्द्रपुरी की, श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की, श्री श्राधा पार्षद श्री ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।